साथ मिलकर हम दोनों हर असंभव को संभव करते हैं।
ब्रह्मा कुमारी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग प्रस्तुत करता है इनर स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंज।
नमस्कार, शुभ संध्या। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी सर्विस विंग की ओर से आयोजित दो दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में। आज का ये सत्र अंतिम सत्र है। पता ही नहीं चला कि कब ये दो दिन बीत गए, क्योंकि जब कुछ अच्छी बातें होती हैं तो सचमुच वक्त का पता नहीं चलता। यात्रा भी यदि सुहावना हो तो पता ही नहीं चलता कि अब कब कहां से कहां निकल गए। हमारी भी ये दो दिवसीय जो यात्रा थी, हमारी भी ये दो दिवसीय यात्रा ठीक ऐसी ही रही। जब भी हम सुबह उठते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दिया करें कि हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्रिया कि एक दिन आपने पुनः मुझे दिया। क्योंकि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और खासकर आज का दौर तो ज्यादा ही अनिश्चित हो गया है। अभी सब कुछ अच्छा है, आने वाले पल में क्या होगा, ये एक चिंता और भय का माहौल आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। जब हम फेसबुक में, व्हाट्सएप में या न्यूज़पेपर में किसी का भी फोटो देखते हैं तो तत्क्षण यही ख्याल आ जाता है कि अरे कुछ हो तो नहीं गया। भले ही उनका जन्म दिवस हो, भले ही उन्होंने कुछ अचीवमेंट की हो, लेकिन एक अनिश्चितता का भाव आज के इस परिवेश में शामिल हो गया है। ऐसे अनिश्चित माहौल में पहले भी अनिश्चितताएं थीं, लेकिन अभी ये थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण कई बार हम अपने आप को चिंतित और भयभीत महसूस करते हैं। इसीलिए आज के दौर में बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को आंतरिक रूप से स्थिर बनाएं, शांत बनाएं, सशक्त बनाएं, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है। और इसीलिए आज का ये अंतिम सत्र इस पर केंद्रित है, इनर स्टेबिलिटी फॉर अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स, कि कैसे हम ऐसे समय पे अपने आप को स्थिर रखें जबकि चारों ओर अनिश्चितता हमें दिखाई दे रही हो। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल सा विषय है आज के सत्र का। और इस पर अपने अनुभव युक्त विचार रखने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं श्री वीरेंद्र जी, आईपीएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वेस्ट बंगाल। पिछले 6 वर्षों से आप राज्यों का अभ्यास भी कर रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखना ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है। आइए वीरेंद्र जी का अभिनंदन करते हैं।
ओम शांति। आज का टॉपिक है इनर स्ट्रेंथ और इनर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स। समय तो हम सबका एक्सपीरियंस है कि हर समय ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम नहीं जानते कि अगले मुहूर्त, अगले क्षण और अगले दिन अब क्या होगा। ये हम सभी का एक्सपीरियंस है। और आजकल ये कोरोना समय में, जब कोरोना वायरस है, तो इस समय शायद ये हम सब लोगों को और भी ज़्यादा विदित हो गया है। कोरोना के समय में हमें सब समय चिंता रहती है कि मैं बीमार ना हो जाऊं। बीमार होऊंगा तो मुझे इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरे जो सगे संबंधी हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो कैसे सब ठीक रहेंगे नहीं। और ये सब जो डर है ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम जो चारों तरफ से अपने जो समाचार मिलते हैं हमें, वो ज़्यादातर नेगेटिव ही हैं। जबकि मेडिकल साइंस ने आजकल वैक्सीन भी निकाल ली है और वैक्सीन सभी को नहीं तो बहुत लोगों को दी भी गई है, पर उसमें भी जिनको दी गई है उनके मन में भी डर है कि हम इसे लें या ना लें। जबकि सभी डॉक्टर्स सभी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये सेफ है। इस तरह का माहौल जो बना हुआ है वो हमारे मन में भय पैदा करता है। सब समय चिंता में रहते हैं हम लोग और भय और चिंता के कारण एक तरह से दुखी भी हैं। बाहर कोरोना है, बाहर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वातावरण में, लेकिन भय कहाँ पर है? हमारे मन में। और मन जो है वो हमारे भीतर है। मन क्या है? मन हमारा जो है सब समय 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता रहता है। सोचता क्या है वो, जो इसको स्टिमुलस मिलते हैं बाहर से या पुराना एक्सपीरियंस है उसके बेस पर सोचता है। तो ये सोचना क्या है, सोचना हमारे थॉट्स हैं। इसका मतलब जो है हमारा जो अंदरूनी जो जगत है, बाह्य जगत हो गया, अगर कोरोना का एग्जांपल लें तो बाह्य जगत में हो गया कोरोना एग्जांपल, कोरोना जो वायरस है, और हमारे अंदरूनी जगत जो है इसमें हो गया भय, और भय है हमारे विचारों से। मैं यहाँ राजयोग पिछले ब्रह्मा कुमारी से पिछले 7 साल से जुड़ा हूँ और यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पता लगा सबसे बड़ा, जो भगवान ने हमें सबसे बड़ी शक्ति दी है, हमें वो शक्ति दी है सोचने की। सोचना हमारे विचार जो कैसे मन में आ रहे हैं हमारे, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो जब मैंने बाहर का जो मुझे स्टिमुलस मिला कि उससे मेरे मन में भय हुआ, चिंता हुई, मैं उससे मैं दुखी हूँ, तो वो जो है बाहर का जो है जैसा स्टिमुलस है वैसे ही विचार हो रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि राजयोग मेडिटेशन में हमने सीखा कि सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोचने की है, और इस शक्ति को और इस चीज़ को हम जो है चेंज कर सकते हैं। बाहर कुछ भी हो रहा हो, मेरे मन में कैसे विचार उत्पन्न होंगे इसका मैं मालिक हूँ, और इसको मैं अगर अवेयर रहूँ, चेतना में रहूँ, मुझे जानकारी रहे मन में क्या सोच रहा हूँ, तो मैं इनको बदल सकता हूँ। हम ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जब ये हो रही हैं बाहर, जो तो कितनी सी डेवलपमेंट भी है, वैक्सीन हो गई है 1 साल से वायरस होने से, जो है डॉक्टर्स कितने कॉन्फिडेंट हैं, लाखों लोग इफेक्ट हो रहे हैं तो लाखों लोग रिकवर हो रहे हैं, बहुत कम परसेंटेज आईसीयू में जाती है और उसकी बहुत ही कम परसेंटेज में जो है जिनकी की मृत्यु होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये बातें हम मिस कर देते हैं। इसके बावजूद ये तो बाहर का स्टिमुलस है, ये फिर भी बाहर का स्टिमुलस है, लेकिन अगर मैं मन में सोचूं कि मैं सुरक्षित हूं, सुरक्षित मैं कैसे हूं, इसका होने का कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा जो कारण ये रहेगा मेरा ये सोचने का कि, इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि मैं यदि मैं कहूं मेरा नाम वीरेंद्र है तो ये मेरा परिचय शायद ठीक ना हो। समय कम होने की वजह से मैं जो है जल्दी में बात कर रहा हूं, तो इसमें बता देता हूं कि मैं आत्मा हूं। मेरा सही परिचय यह होगा कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा जो एक शरीर में है जिसका नाम वीरेंद्र है। तो जैसे ही मुझे पता लगता है कि मैं आत्मा हूं, मैं एनर्जी हूं, तो आत्मा के साथ मुझे फौरन याद आते हैं कि परमात्मा, और जब मुझे याद आते हैं तो मैं उनसे जुड़ता हूं। मैं उनकी जो विशेषताएं हैं, मैं उनके जो गुण हैं और जो शक्तियां हैं, मैं उनका मनन चिंतन करता हूं। परमात्मा हर विषय, हर गुण में, हर शक्ति में सागर है। सागर का हम इसलिए कहते हैं कि जैसे हम दुनिया में शायद 750 करोड़ जनसंख्या है और सब एक साथ यदि उनसे वो उन गुणों को, उन शक्तियों को उनसे मांगे तो वो सबको एक साथ दे सकते हैं। तो जब मैं उनसे शांति, प्रेम, सुख और शक्तियों की बातें करता हूँ तो वो चीज़ें मुझ में आने लगती हैं। इसका असर क्या होगा, जब ये चीज़ें मुझ में आएंगी, जब ये चीज़ें मुझ में आती हैं तो मेरे विचारधारा बदलने लगती है। मेरे विचारधारा के अंदर सब समय शांति के विचार आएंगे, सुख के विचार आएंगे, प्रेम के विचार आएंगे और साहसपूर्ण शक्ति वाले विचार आएंगे। जो मैं डर रहा था अब वो डर नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। दूसरा, जब मैं भगवान को सब समय याद करूंगा तो जो इसका मतलब मैं तो सर्वशक्तिशाली के साथ, याद का मतलब साथ हो गया। जब मैं उनके साथ हूं तो मैं भी सर्वशक्तिशाली हो गया। हम लोग यहाँ राजयोग मेडिटेशन में सीखते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हम मास्टर सर्वशक्तिशाली हो गए। तो इतनी बड़ी शक्ति जब मेरे साथ है तो मैं हमेशा सेफ हूँ। तो इसका मतलब मेरे विचार जो है हमेशा सकारात्मक रहेंगे और मेरे मन में हमेशा खुशी रहेगी, उत्साह रहेगा, उमंग रहेगा, और ये मेरी जो है मेरी इनर स्ट्रेंथ होगी, इनर, जैसे ये मेरी इनर स्टेबिलिटी बनाता है। ये सब अभी तो कोरोना का एक एग्जांपल डिस्कस हुआ। हर चीज के अंदर हमारे हमारे व्यवसाय में जो हम काम कर रहे हैं, हर समय आजकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, आजकल है, हमेशा से थी और हमेशा ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा ये तो इस तरह से। और बाहर का एनवायरनमेंट तो हम कितना मैनेज कर पाएंगे, उसका हमारी सीमा रहेगी हमेशा, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो वो सीमा रहेगी। लेकिन हमारे, हम पूरे मालिक हैं अपने अंदरूनी जगत के, जहाँ पर कि हमारे विचार हैं, और उसको हम जितना चाहें उसको हम भगवान की याद में, भगवान जो हमेशा हमारे साथ हैं उनकी याद में उसको हम हमेशा उसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं, और हमारा जितना जितने हमारी रेजिलियंस बढ़ेगी अंदर से तो हम उतना ही बाह्य एनवायरनमेंट को जो है, बाहरी जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि भगवान जो सब समय हमारे साथ हैं उनको हमें केवल याद करना है। याद का मतलब है जो है हमें उनके गुण, उनकी जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में मनन चिंतन करना है, और वो मनन चिंतन करने से ही वो चीज़ हमें मिल रही है, और यही राजयोग मेडिटेशन है। ये जो आजकल अनप्रेडिक्टेबल टाइम है जो कि सब समय था, सब समय है, लेकिन कोरोना के कारण हमें सबको बहुत ज़्यादा विदित हो गया है। इस बात को हम, इस संदेश को, इस बात की जो हमें रियलाइजेशन हुई है, इस बात को अपने साथ रखें और अगला स्टेप लें। रियलाइजेशन पहला स्टेप हो गया, अगला स्टेप लें कि हम अपने अंदर की अंदरूनी शक्ति को, इनर स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। तो मैं इसके साथ ही अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ओम शांति।
मित्रों, खेल के मैदान में भी सब कुछ अनिश्चित ही होता है। यदि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप नहीं जानते कि बॉलर कैसी बॉल डालने वाला है, राइट? आप स्थिर हैं तो आप सही निर्णय लेकर के सही स्ट्रोक लगाते हैं। आप चेस खेल रहे हैं तो भी आप नहीं जानते कि सामने वाला कैसा मूव लेने वाला है। आप उसे देखते हुए यदि स्थिरता से निर्णय लेते हैं तो विजय आपकी होती है। जीवन भी एक खेल है, यहां पे भी अनेक प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां आएंगे, लेकिन अपने आप को शांत और स्थिर रखते हुए यदि हम इस जीवन रूपी खेल को खेलते हैं तो परिणाम हमारे पक्ष में ही होता है। और यही सीख हम सबको देती हैं आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो ब्रह्म कुमारी के केंद्र हैं उनकी डायरेक्टर हैं, साथ ही हेडक्वार्टर्स में ज्ञान सरोवर परिसर की भी आप निदेशिका हैं। तो आइए दीदी जी के सुंदर आशीर्वचन लेते हैं और जानते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हम स्थिर रह सकते हैं। साथ ही अपनी शुभकामनाएं हमें अर्पित करेंगी डॉक्टर सौम्या मिश्रा जी, एडीजी ओडिशा। आप ओडिशा की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर रही हैं। आइए अभिनंदन करते हैं।
ओम शांति। प्रिय दर्शकों, सिक्योरिटी विंग, आज हम अपने दुश्मन देश, चाहे चीन है, पाकिस्तान है, उसके सामने लड़ने की तो तैयारी करते हैं, और हमारे जवान काफी हिम्मत से सब सामना करते हैं, परंतु आजकल हमारे जो बड़े दुश्मन है वो है कोरोना और हमारी आंतरिक नेगेटिव वृत्ति, भय, चिंता, दुख, अशांति, ये हमारी अंदर के दुश्मन है जिसके साथ हमें हमेशा लड़ना पड़ता है, और उसका सामना करने के लिए हमें सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्ति लेनी पड़े। और हमने देखा है जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं वो अपने को आत्मा समझ, पिता परमात्मा से संबंध छोड़, सर्वशक्तिवान से शक्ति ले, अपना अंदर ये बहुत पॉजिटिव शक्ति भरते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, क्योंकि जब हम डरते हैं तो डराने वाले बहुत है, और कहते हैं जो डरते हैं मौत से वो मौत से कई बार पहले मर जाते हैं। तो इसी रीत से कोरोना से डरने से कोरोना छूटेगा नहीं, परंतु जितना हम अपने आप को परमात्मा की छत्र छाया में रखेंगे, सर्वशक्तिवान की रक्षा के अंदर रखेंगे, तो हम सेफ रहेंगे और हमें अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ानी है। हम अपने को जितना जितना स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करेंगे, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ता है, ऐसे स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है परमात्मा की याद सहज। वैसे तो याद सब करते हैं, परंतु कोई है नियम से करते हैं, कोई स्वार्थ से करते हैं, कोई बहुत जरूर पड़ती है तब करते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारियां कहती है कि यदि आप नियमित ईश्वरीय ध्यान धरोगे तो वो आपका ध्यान रखेंगे। तो इसलिए एक नियम बना लो, और यदि परमात्मा का परिचय नहीं लिया है, अपना परिचय नहीं है, क्योंकि शारीरिक परिचय तो सबको है, परंतु मैं आत्मा हूँ ये परिचय नहीं है, तो ये परिचय भी आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ले सकते हो। और ये परिचय आप जितना अपने आप में रखकर आत्मिक स्मृति में परमात्मा की याद में रहेंगे, आप देखेंगे आपका जीवन बहुत बदल जाता है। आपके अंदर ये आंतरिक शक्ति आएंगी जो आपके अंदर के दुश्मनों का सामना कर सकेंगे और दूसरों को भी मदद कर सकेंगे। क्योंकि यदि आप शांत रहेंगे तो आपके घर वाले भी शांत रहेंगे, आप सभी को प्यार करेंगे तो आपको सबका प्यार मिलेगा, आप जितनों को आनंद सुख शांति देंगे तो ये खजाने ऐसे हैं जो देने से और भी बढ़ते जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ जो आप इस कॉन्फ्रेंस का लाभ ले रहे हैं, और लाभ लेकर और भी आप शक्तिवान बनेंगे। ओम शांति।
परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम जानते हैं सुबह से रात तक भी किस प्रकार परिवर्तन होता है हम देखते हैं। प्रकृति में भी ऋतुएं अलग अलग आती हैं। यदि बारिश का मौसम आने वाला है हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ठंड का मौसम आ रहा है उसके लिए भी हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि परिवर्तन होने वाला है। एक अच्छा स्टूडेंट भी अपने एग्जाम की पूरी तैयारी रखता है कि जब पेपर होगा, फाइनल एग्जाम होगा, मैं अच्छी तरह से अपने आप को तैयार रखूं। कुछ परीक्षाओं का हमें पता होता है लेकिन कुछ परीक्षाओं का हमें पता नहीं होता। लेकिन यदि परीक्षाओं का हमें पता नहीं भी है तो भी एक तैयारी तो हम सब जरूर कर सकते हैं, और वो तैयारी है अपने आप को अंदर से तैयार रखना किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए, अपने आप को सशक्त रखना, मजबूत बनाना, साथ ही स्थिर और शांत रहना, और उससे भी ज्यादा खुद को उत्साहित और मोटिवेट करने की आवश्यकता है मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए आइए अब चलते हैं, एक मोटिवेशनल सॉन्ग लेकर हमारे बीच आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह जी, और इसके पश्चात एक मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ होंगे करण सिंह जी, जो कि 30 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। आइए दोनों का अभिनंदन करते हैं।
कहा तक ये मन को अंधेरे झलेंगे, हंसी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझर का मौसम घड़ी तो घड़ी है, ये पतझर का मौसम घड़ी तो घड़ी है, नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
मैं डॉक्टर सौम्या मिश्र हूँ, एडीजी फायर सर्विसेज होमगार्ड्स एंड सिविल डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। मैं ओडिशा के एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे फादर वो फिलोसफी प्रोफेसर थे। ये दोनों चीजों के कारण मेरे लाइफ में वैल्यूज बहुत ज्यादा फंडामेंटल रहा है। वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन और सबसे आगे देशभक्ति, ये मेरे फंडामेंटल जो कोर वैल्यूज हैं वो मेरे हैं। हमेशा मेरे लाइफ में मैं देखी हूँ ये सब चीज मुझे बहुत हेल्प किए हैं। और जब मैं 1994 में आईपीएस में आई और मेरे जो ड्यूटीज में निभाने के टाइम में मैं देखी कि दीज वैल्यूज हैव हेल्प मी सो मच। अगर किसी को न्याय करना है, किसी का रियल जस्टिस देना है, एंड व्हेन आई इन्वेस्टिगेट एंड इंक्वायर अ केस, उस समय मुझे ये वैल्यूज बहुत हेल्प किए हैं। एक छोटी सी घटना हुई थी फर्स्ट पोस्टिंग में, व्हेन एक बहुत ही खराब केस था जिसको मैं बहुत ज्यादा फॉलो कर रही थी, तो मेरे एक इंस्पेक्टर मुझे पूछा था कि इतना आप क्यों फॉलो कर रहे हैं, वो गरीब है, उसका कोई नेटवर्क नहीं है। तो आई टोल्ड हिम दैट आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी। और बाद में जैसे जैसे ही ये वैल्यूज को लेके मैं चलती गई, तब मुझे पता चला कि ये आपका पर्सनैलिटी डिफाइन करने लगता है। लोग आपके पास नहीं आते हैं गलत काम करवाने या प्रेशराइज करने, क्योंकि उनको पता है कि आप किसी के सुनते नहीं हैं। और इसी तरह ये जो वैल्यूज हैं वो खाली मेरे काम को एफिशिएंटली करने के लिए नहीं हेल्प किए हैं, बल्कि वो खुद मेरे एक रक्षा कवच जैसे बन के रहे थे, क्योंकि एक लक्ष्मण रेखा जैसे डाला गया था, आई डू नॉट क्रॉस इट, आई स्टे इन विद इन माई वैल्यूज। इसी के कारण यही वैल्यूज मेरे जो सिक्योरिटी वर्क में मुझे एफिशिएंट बनाए और मेरे खुद के लिए भी एक सुरक्षा छाता जैसे प्रोटेक्शन देते रहे। सो ब्रह्म कुमारीज के साथ मेरा बहुत ही पुराना परिचय है, मेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग भी वहां ट्रेनिंग लिए हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। सो एक तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट एंड ब्रह्म कुमारीज दोनों ही सेम टाइम काम करते हैं, जैसे हम भी ट्राई करते हैं कि पीस मेंटेन हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, और ब्रह्म कुमारीज भी पीस क्रिएट करते हैं एंटायर वर्ल्ड में। सो थैंक यू ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से अपना शॉर्ट में ये अनुभव शेयर करना चाहता हूं। बहुत सुंदर अनुभव जो मुझे राजयोग मेडिटेशन से प्राप्त हुआ। मैंने 20 वर्ष भारतीय वायुसेना में 1989 से 2009 तक अपनी सेवाएं प्रदान की। इस 20 वर्ष में राजयोग मेडिटेशन ने मुझे बहुत मदद किया। मेडिटेशन की मदद से मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए और किस प्रकार से ये हमारी सेनाओं के लिए भी लाभदायक, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुआ। मेडिटेशन सीखने से सबसे पहले हाउ टू मैनेज द स्ट्रेसेस ऑफ द लाइफ। 21st सेंचुरी में हम सभी जी रहे हैं, आज चारों तरफ टेंशन की लहर है और अभी तो खासकर पिछले 1.5 वर्ष से आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से कोरोना ने जीवन को प्रभावित किया है, अस्त व्यस्त किया है। तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में कैसे स्ट्रेस को हैंडल किया जाए, राजयोग मेडिटेशन की मदद से हमने ये सीखा। क्योंकि स्ट्रेस तब होता है जब हमारी कोपिंग एबिलिटी जो है वो सिचुएशन की डिमांड से कम रह जाती है, परंतु मेडिटेशन से हम अपने अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर लेते हैं कि जीवन की कोई भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को हैंडल करने की एनर्जी हमारे अंदर रहती है। एडवांस में एनर्जी होने से सिचुएशन आती है, प्रेशर्स आते हैं, लेकिन मन को स्ट्रेस नहीं दे पाती है और हम एक खुशनुमा जीवन जी पाते हैं। आज के संसार में मुस्कुराना बहुत मुश्किल हो गया है, खुश रहना मुश्किल हो गया है, लेकिन जब हमारे पास पॉजिटिव थॉट की एनर्जी है, पॉजिटिव थिंकिंग की एनर्जी है, तो हम जीवन की किसी भी सिचुएशंस को बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए हैंडल कर सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, फूलों की तरह खिल खिलाया करो, फूलों की तरह खिल खिलाया करो, गम हो समंदर से गहरा तो भी मुस्कुराया करो। छोटी छोटी बातें सैलाब बनती है, राय मानो भूल जाया करो। पावर टू फॉरगेट द स्मॉल थिंग्स हैपनिंग इन द लाइफ। रोज छोटी छोटी अनेक बातें होती हैं जो इकट्ठी होकर के मन के ऊपर स्ट्रेस डालती हैं, बोझिल बना देती हैं, लेकिन जिन्हें लेट गो करने की आदत सीख ली है तो वो अपने जीवन के स्ट्रेसेस को बड़े आराम से हैंडल कर पाते हैं। मेडिटेशन ने हमें पावर टू रिमेन पीसफुल, ये हमको शक्ति दी, शांत रहने की शक्ति, मन को अंदर से शीतल और शांत रखने की शक्ति मेडिटेशन से प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि राजयोग मेडिटेशन ने मुझे बहुत शक्ति प्रदान की, मुझे अपनी कर्तव्यों के प्रति लॉयल बनाया, ट्रूथफुल बनाया, क्योंकि हम सत्य पिता के बच्चे हैं, हमारे अंदर वो सच्चाई का फैक्टर होना चाहिए, देशभक्ति की हमारे अंदर एक ट्रू फीलिंग होनी चाहिए अपने कर्तव्य के प्रति, सीनियर्स के प्रति। वो मैंने पाया कि मेरे अंदर वो मेडिटेशन के कारण बढ़ी और मेरा जीवन बहुत ही अच्छा और सुखमय बनाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का और सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का, जिन्होंने मुझे इतनी सुंदर एजुकेशन प्रदान की, जिसके कारण मैं अपने फौजी जीवन को एक फौजी ड्रेस में भी मैं योगी बनकर के जी पाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का जीवन सुखमय हो, तनाव रहित हो, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। ओम शांति।
मित्रों, एक गहन सिद्धांत है जिसे हम बचपन से ही सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। इस पर हमने गहराई से भले विचार ना किया हो, लेकिन ये सत्य है कि हम स्वयं ही परिस्थितियों को क्रिएट करते हैं, ज्यादातर परिस्थितियों को अपने विचारों से, इसीलिए कहा गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात इसी से जुड़ी हुई है, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा संसार में भी होती है कि जैसा आप सोचते हैं उस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। हमने ईश्वरीय महावाक्यों में भी ये बात सुनी है कि यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो यदि कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो सब कुछ अच्छा होता चलेगा। तो ये तो हमारे हाथ में है ना, कि हम अपनी परिस्थितियों को बहुत ज्यादा अनिश्चित कर देते हैं, उनसे घबराते हैं या अपने आप को स्थिर रखते हैं। और यही सुंदर प्रकाश, यही सुंदर संदेश अपने जीवन से, अपने वक्तव्यों से लगातार हमें प्रदान करती हैं आदरणीय सिस्टर शिवानी जी, जिनसे आप सभी परिचित हैं। लगातार आप अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी लोगों में आध्यात्मिक जागृति ला रहे हैं, लोगों को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं और साथ ही साथ उनके जीवन में, मैं कहूंगा, हरियाली और खुशहाली ला रहे हैं। इस अनिश्चितता के दौर में हम कैसे अपने मन को स्थिर रख सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, आज आप इस विषय पर प्रकाश डालने वाली हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपको नारी शक्ति सम्मान प्राप्त हुआ है, आप विमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से भी सम्मानित हैं। ऐसे ही ना जाने कितने सारे अवार्ड्स आपने प्राप्त किए हैं। अनुरोध करूंगा आज के इस सुंदर, महत्वपूर्ण और अति आवश्यक विषय पर आप हमें प्रकाश दें। आदरणीय सिस्टर शिवानी जी।
ओम शांति। इन अ पावर इन अनप्रिडिक्टेबल टाइम्स, आंतरिक शक्ति उन परिस्थितियों में, उन हालातों में जो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, शायद हमारी तैयारी भी नहीं थी उनके लिए, अचानक आ जाती हैं कुछ बातें अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, शहर में, देश में और सृष्टि पर अचानक परिस्थिति आ सकती है, क्या उसका सामना करने के लिए मेरे पास आंतरिक शक्ति है और मेरी आंतरिक शक्ति उस परिस्थिति पर क्या प्रभाव डाल सकती है। आप सब देश के वो विशेष आत्माएं हैं, महारथी हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए ऐसी ऐसी विकराल परिस्थितियों का सामना किया है, ऐसी कठिन परिस्थितियों में आप रहे हैं जो बाकी देशवासी हम सब तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारी उसके लिए तैयारी ही नहीं हुई। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कभी ऐसी परिस्थिति में जाएंगे, उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे, कभी नहीं सोचा। तो क्योंकि तैयारी नहीं हुई तो हम कभी उस बात का सामना भी शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सबकी तो कितनी डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग होती है, हर रोज तैयारी की जाती है, मन से भी और शरीर से भी, और ऐसी तैयारी जो सिर्फ खुद की रक्षा नहीं करते, पूरे देश की रक्षा करते हैं। ऐसी पावर, ऐसी आंतरिक शक्ति, ऐसी शारीरिक शक्ति जो पूरी देश, 135 करोड़ का देश है, उस 135 करोड़ लोगों के देश की रक्षा आपकी आंतरिक और आपकी शारीरिक शक्ति की ट्रेनिंग करती है। ये है ह्यूमन कैपेसिटी, मनुष्य की ये शक्ति है। लेकिन हमें सिर्फ इस शक्ति को सदा इमर्ज रखना है, जागृत रखना है और उसको हर परिस्थिति में यूज करना है। दो चीजें हैं, एक है बाह्य शक्ति अर्थात सिचुएशंस, लोग, लोगों के व्यवहार, सारा दिन में बातें आती रहती हैं हमारे सामने, और दूसरी है आंतरिक शक्ति, इनर पावर। देश की रक्षा के लिए बड़े बड़े युद्ध, कठिन कठिन परिस्थितियों का सामना करना, वो आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है और आपको अनुभव भी हो चुका है। लेकिन अब सारा दिन की जीवन की कुछ कुछ बातों को भी देख लेते हैं। कभी कभी हम बड़ी बड़ी परिस्थितियों में बहुत वीरता से, बहुत स्थिरता से और निडरता से उसको क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी जीवन की छोटी छोटी बातों में, परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर ले, कोई हमारे काम में विघन डाले, कोई बेवजह हमें तंग ही करता रहे, ये तो जीवन की बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन कभी कभी ये छोटी छोटी बातों में हमारी आंतरिक शक्ति घट जाती है, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग होती है ना, वो बड़ी बड़ी बातों के लिए होती है। और जिस चीज के लिए हम अपने आप को ट्रेन करेंगे, हमारा मन और शरीर उसके लिए सदा तैयार होगा। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों के लिए हम अपने आप को ट्रेन नहीं करते, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हमें खुद खुद को देनी होती है। तो छोटी छोटी बातों के लिए जब हम अपने आप को ट्रेन नहीं करते, हम अपने आप को समझाते नहीं हैं, हम अपने आप को तैयार नहीं करते कि वो छोटी छोटी बातों में हमें कैसे स्थिर रहना है। जब छोटी छोटी बातों के लिए हम अपनी तैयारी नहीं करते, तो जब वो बात आती है तो कभी कभी, सबके लिए नहीं, कभी कभी और कुछ कुछ लोगों के लिए आंतरिक शक्ति हिलती है, आंतरिक शक्ति घटती है। क्योंकि जब वो बात सामने से आती है तो हमारी स्थिति कैसी होती है, हमारी सोच कैसी होती है, हमारी भावनाएं कैसी होती हैं, फिर हमारे बोल कैसे होते हैं और फिर हमारा व्यवहार कैसा होता है, ये सब कुछ तो हमारा अपना है ना। हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, हमारा बोल और हमारा कर्म, ये सब हमारी रचना है, ये शक्ति हमारी है और ये हमारी इनर पावर पे डिपेंडेंट है। हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि सेम बातों में, सेम परिस्थितियों में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। वो ही बात दो जनों के सामने आए, एक जना उसको बहुत हल्के में छोड़ देता है और दूसरा उसके बारे में काफी देर तक सोचता रहता है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा, ऐसी सोच चलनी शुरू हो जाती है। और जब ये सोच चलती जाती है और सोच बहुत अच्छी नहीं होती है, ये सोच में कभी कभी दुख होता है, कभी नाराजगी होती है, कभी चिंता होती है, कभी सूक्ष्म रूप से डर होता है। जब ऐसी भावनाएं होती हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं होती हैं, हम सबको पता है कि ऐसी भावनाएं और ऐसी सोच हमारी ये आंतरिक शक्ति को क्या करती है, घटाती है। तो छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में हम स्थिर रहते हैं। हम इसलिए स्थिर रहते हैं क्योंकि उसके लिए हमारी आंतरिक शक्ति को तैयार किया गया है, हमारे शरीर की शक्ति को उसके लिए ट्रेन किया गया है। लेकिन ये जो सारा दिन की छोटी छोटी बातें आती हैं, उसमें कभी कभी हम अपनी आंतरिक शक्ति को गवा देते हैं, इन पावों को डिप्लीट कर देते हैं। तो आज इसको चेक करते हैं कि हमारी इन पावर कौन सी बातों में डिप्लीट होती है, कम किस में होती है, क्यों होती है, ये क्यों घटती है हमारी आंतरिक शक्ति, और इस आंतरिक शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं और बढ़ाकर उसको सदा यहाँ पर भरपूर रखें, ताकि हमारे जीवन में अचानक कोई बात आए, छोटी आए या बड़ी आए, लेकिन आंतरिक शक्ति इतनी भरपूर हो कि हम बात को स्थिरता से, सहजता और सरलता से सिर्फ खुद ही नहीं क्रॉस करें, लेकिन औरों को भी सहयोग देकर उसमें क्रॉस करें। जैसे देश में जब भी कोई परिस्थिति आती है, एक तो सिर्फ देश की रक्षा वो तो आप करते ही हैं, लेकिन जब देश में कोई परिस्थिति आती है, कोई बाढ़ आती है, अर्थक्वेक आता है, इस समय भी कोविड है, बहुत देश में आवश्यकता होती है, ऐसे समय पर आप अपनी रक्षा नहीं सिर्फ करते, लेकिन अपनी रक्षा करके अनेकों को, लाखों 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 को सहयोग देते हैं। आपके सहयोग की वजह से अनेकों की रक्षा हो जाती है ऐसी आपदाओं के समय पर भी। तो ये इनर पावर है। इनर पावर सिर्फ हमें शक्ति नहीं देती, लेकिन हमारे इनर पावर अनेकों को सहयोग देती है, अनेकों को शक्ति देती है। तो इसलिए इस इनर पावर को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए और चेक करके इसको बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि अचानक कोई बात आ जाए और मेरे पास शक्ति भरपूर होनी चाहिए। तो सबसे पहली इक्वेशन जिसके आप सबको तो बहुत ट्रेनिंग है, लेकिन फिर भी आज चेक कर लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन ये है कि मेरी आंतरिक स्थिति, द स्टेट ऑफ माई माइंड, द स्टेट ऑफ माई बीइंग, ये जो मेरी आंतरिक स्थिति है, ये किस पर निर्भर है? क्या ये मेरी चॉइस है या क्या ये परिस्थिति और लोगों पर निर्भर है? याद कीजिए, लास्ट जब किसी रिश्ते में या किसी बात में आपको थोड़ा सा गुस्सा आ गया या आप थोड़ा सा इरिटेट हो गए, थोड़ा सा नाराज हो गए, याद कीजिए उस सीन को अभी और उस सीन को देखकर अपने आप से पूछिए कि उस क्षण जब वो गुस्सा आ गया था या वो इरिटेशन हो गई थी, तो उस समय अगर किसी ने पूछा होता, क्या बात है जी, क्यों इतना गुस्सा आया हुआ है, तो उंगली किसकी तरफ जाने वाली थी? हमारी उंगली ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बाहर चली जाती है और हम कहते हैं काम ही ऐसा किया उसने, गुस्सा तो आना ही था। इस वोकैबुलरी को चेक करते हैं। ये हमारी सोचने की भाषा है, ये हमारे बोलने की भाषा है, ये हमारी मान्यता है कि मुझे जो गुस्सा आया वो उनकी गलती से था, जो इरिटेशन हुई वो उनकी वजह से थी, जो मुझे दुख हुआ, मुझे बुरा लगा, वो भी उसकी वजह से था, और जो मुझे खुशी मिले, जो मुझे बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई, वो भी उनकी वजह से, उस बात की वजह से था। ये जो हमारी मान्यता है, ये जो हमारा बिलीफ है, ये क्या करता है, ये हमें ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है कि यहां जो भी हो रहा है अच्छा या नॉट अच्छा, मतलब खुश या उदास, शांत या गुस्से वाला, सुखी या दुखी, जो भी यहाँ अनुभव होता है, ये किस पर निर्भर है? तो हमें लगता है कि ये परिस्थिति और लोगों के व्यवहार पर निर्भर है। और कभी कभी हम जीवन की सीन्स को इसी बिलीफ सिस्टम से क्रॉस करते रहते हैं, तो जैसी परिस्थिति वैसी हमारी स्थिति हो जाती है। तो स्थिति के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है, मतलब स्टेट ऑफ माइंड पर ध्यान नहीं देना पड़ता है। परिस्थिति अच्छी तो हम खुश, और परिस्थिति अच्छी नहीं तो हम दुखी। हमने सोचा ये तो नेचुरल बात है, और ऐसे ही हम जीवन जीते आए हैं। और जब हम ऐसे जीवन जीते हैं तो हमारे मन की स्थिति दूसरों पर निर्भर हो जाती है, दूसरों पर निर्भर हो जाती है, परिस्थितियों पर निर्भर हो जाती है। और आप सबको तो पता है, अगर हम परिस्थिति पर या लोगों के व्यवहार पर निर्भर हो गए तो हमारी शक्ति का क्या होगा, शक्ति का क्या होगा? हम किसी और पर जब निर्भर हो जाते हैं तो हमारी शक्ति घट जाती है ना। जैसे कोई काम हम खुद करते थे, फिर हम किसी और पर निर्भर हो जाते हैं कि ये कर देंगे, ये कर देंगे। धीरे धीरे हमारी वो काम करने की आदत ही छूट जाती है, और कुछ समय बाद अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहते हैं अब मेरे से वो काम नहीं होने वाला, अब तो बहुत लोग हैं वो काम कर देते हैं। तो कोई कहे बहुत लोग तो हैं लेकिन आप कर लो ना, तो कहा नहीं अब मेरे से ये काम नहीं होता, क्योंकि अब हम किसी और पर निर्भर हो चुके हैं। डिपेंडेंसी। तो इसी तरह इमोशनल डिपेंडेंसी, हमारे मन की स्थिति, हमें ये लगा कि ये परिस्थिति और लोगों पर निर्भर है, और इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि परिस्थितियां सही हो, सब कुछ सही हो, सब कुछ मेरे अनुसार हो, लोगों का व्यवहार अच्छा हो, सब लोग काम अच्छे से करें। जब सब कुछ अच्छा अच्छा सही सही होगा तो मेरा मन शांत रहेगा, खुश रहेगा। कितना इजी है खुश रहना, ये हमें लगता है। कितना इजी है खुश रहना, कितना इजी है शांत रहना। बस एक ही तो चीज चाहिए, सब कुछ बाहर परफेक्ट होना चाहिए। क्या ऐसा कभी हुआ कि सब कुछ बाहर परफेक्ट हो, वो भी हमारे अनुसार? हमारे अनुसार क्या लोग हमारे अनुसार व्यवहार करेंगे? क्या लोग हमारे अनुसार काम करेंगे? नहीं होता है। हर एक अपने संस्कारों अनुसार व्यवहार कर रहा है, हर एक अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सही और गलत की परिभाषा अनुसार काम कर रहा है। उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, भले वो हमारी सही की डेफिनेशन के साथ मैच नहीं करता है। और जब वो हमारी सही की डेफिनेशन के साथ मैच नहीं करता है तो हम रिएक्ट कर देते हैं, और जब हम रिएक्ट करते हैं हम कहते हैं वो उसकी वजह से हुआ, और जब हम ये कहते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति घटती है। तो इसको यहाँ पर सोल पावर, इनर पावर को एक बैटरी की तरह देखते हैं। विजुअलाइज कीजिए, यहाँ एक बैटरी है। एक तो हम आज देखेंगे कि इस बैटरी को रोज चार्ज कैसे करना है, क्योंकि रोज चार्ज करना चाहिए ना। और दूसरा, सारा दिन में इस बैटरी का ध्यान रखना है कि सारा दिन में ये बैटरी घटनी नहीं चाहिए, हमेशा फुल्ली चार्ज रहनी चाहिए, ये ध्यान हमें रखना है। तो सबसे पहली इक्वेशन जो आज हम चेक कर ले, और जो हम अपने मन के अंदर पक्का कर ले, अपनी मान्यताओं को, अपनी बिलीफ सिस्टम्स को चेक करके चेंज कर ले। परिस्थिति बाहर है, लोगों का व्यवहार उनकी स्थिति है, हम कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसे बात करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, ये हमारी रचना है। इट इज आर चॉइस, इट इज आर क्रिएशन। बहुत पुरानी मान्यता है, ये हमारी बिलीफ है कि ये उन पर निर्भर है, ये सच नहीं है। ये आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, नॉट पीपल डिपेंडेंट, नॉट सिचुएशंस डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट है। हम स्वराज्य अधिकारी है, स्वराज्य, स्व पर राज्य करने वाले, मन बुद्धि संस्कारों पर, कर्म इंद्रियों पर, सब पर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी हम हैं। तो ये अटेंशन, अब इससे क्या होगा? सारा दिन में बातें आएंगी, कभी कभी हम थोड़ा गुस्सा भी कर देंगे, कभी हम उदास हो जाएंगे, कभी हम हर्ट हो जाएंगे। अभी थोड़े दिन हो सकते हैं जब तक हम सीख नहीं लेंगे कि ये कैसे नहीं करना है। अब अगर हम कभी ऐसा हो जाएंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप हमें उस समय क्या करना है, हमें ये नहीं कहना उनकी वजह से, उसकी वजह से। वी विल नॉट पुट द फिंगर आउट। हम ब्लेम नहीं करेंगे। ब्लेम करना, दूसरों पर इल्जाम लगाना, ये अपने मन की स्थिति की जिम्मेवारी न लेना है। हाँ, जो उन्होंने किया वो सही नहीं था, जो बात आई वो सही नहीं थी, इस समय जो परिस्थिति आई हुई है वो भी कोई सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है बाहर। लेकिन ये जो बाहर सही नहीं है, ये बाहर ही सही नहीं है, लेकिन ये बाहर मेरे अंदर की स्थिति को नहीं बनाता है। मेरी अंदर की स्थिति मुझे चूज करनी है, मुझे चूज करनी है। तो सबसे पहली चीज, रोज और दिन में कई बार इस बात को अपने आप को याद दिलाएं और बार बार दोहराएं कि मेरी हर थॉट, मेरी फीलिंग्स, मेरे वर्ड्स, मेरे बिहेवियर, ये मेरी रचना है, ये मेरी रचना है। मेरे मन का और मेरे इन कर्म इंद्रियों का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। हम डिसाइड करते हैं कैसा फील करना है, हम डिसाइड करते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और हम डिसाइड करते हैं कैसे व्यवहार करना है। अब अगर सामने वाला कुछ बहुत ही गलत बोल दे आपको, और अकेले में भी ना बोले, बहुतों के सामने बोल दे, अब बात तो अच्छी नहीं थी ना, सबके सामने झूठ बोल दिया हमारे बारे में, गलत बोल दिया और ऐसे सिद्ध कर करके बोला कि जैसे कि बिल्कुल सच है, इतना गलत व्यवहार किया सबके सामने मेरे साथ, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये थॉट आनी शुरू होती है। और जैसे ये थॉट आती है तो हम भी उनको कुछ कुछ कह देते हैं, हम भी रिएक्ट कर देते हैं, हम भी अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, हम भी उनकी गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं, हम भी आसपास लोगों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने गलत बोला है। और जब ये हम करना लग जाते हैं तो हम बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं, हम कभी कभी जोर से बोल देते हैं, हम गलत भाषा का उपयोग कर देते हैं, हमारी इमोशंस बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं उस समय, चाहे कुछ क्षणों के लिए हो, लेकिन उसके बाद अपने इमोशन को सिद्ध नहीं करना, ये नहीं कहना चाहिए जो मैंने किया बिल्कुल राइट किया, उनकी गलती ही ऐसी थी, उनका व्यवहार ही ऐसा था, मुझे ऐसा बोलना ही था। नहीं नहीं, उनका जो व्यवहार था वो तो उनके संस्कारवश था, उनके मन में इस समय जो चल रहा हो हमें तो नहीं पता। अगर सामने कोई बीमार हो तो क्या हमें भी बीमार की तरह व्यवहार करना है? नहीं, वो बीमार है सामने, कहां से बीमार है? अपनी भावनाओं में बीमार है। जब कोई इस तरह से गलत बोलता है, झूठ बोलता है, चिल्ला के बोलता है, गलत आरोप लगाता है, निंदा करता है, वो मन से खुश नहीं होता है, वो मन से बहुत ही हलचल में होता है, बहुत ही डिस्टर्ब होता है। कोई ना खुश व्यक्ति ही गलत व्यवहार कर सकता है, अर्थात जिसकी आंतरिक शक्ति घटी हुई होती है वो ही इस तरह से व्यवहार करता है। लेकिन वो तो उनकी है ना, उनकी है, हमें क्या हुआ? हम तो ठीक थे बिल्कुल, हमने क्यों उस तरह से बात करनी शुरू कर दी? हमने क्यों अपने बात करने का तरीका बदल दिया? हम तो अभी अभी 5 मिनट पहले बहुत आराम से बात कर रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, फिर हमें क्या हो गया? हमने उनकी इमोशनल इन्फेक्शन को कैच कर लिया। क्यों कैच कर लिया? क्योंकि हमने सोचा कि उन्होंने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा तो आना ही है, तो मुझे ऐसा। ये छोटी सी बात, हर छोटी छोटी बातों में हमारी आंतरिक शक्ति को घटाती है। तो एक चीज आज पक्की कर लेंगे, हमारा मन, बुद्धि और कर्म इंद्रियां किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति के कैसे भी व्यवहार पर और किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। वो उनका व्यवहार उनका है, परिस्थिति बाहर है। मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरी चॉइस है और मेरी चॉइस मेरी शक्ति को बढ़ाती है, ऐसी चॉइस करनी है। ये पुरानी मान्यता छोड़ देते हैं कि उन्होंने जोर से बोला तो मुझे भी तो जोर से बोलना चाहिए, उन्होंने एक सुनाया तो मुझे भी तो दो सुनाना चाहिए, नहीं तो वो क्या समझेंगे मैं कमजोर हूं। ये भी तो एक मान्यता है, क्योंकि हमने सोचा अगर मैंने उस तरह से नहीं बोला तो उनको लगेगा कमजोर हूं मैं। नहीं, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे और हम स्थिर रहें, ये नहीं कि वो हमें एक्सप्लॉइट कर सके, ये हम होने नहीं देते कि कोई हमें एक्सप्लॉइट करे। लेकिन कोई सिर्फ शोर मचा रहा है, गलत बात कर रहा है, अपमानित शब्द बोल रहा है, पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है वो व्यक्ति, अपने ऊपर आपा खो चुका है, संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है, वो बहुत ज्यादा अंदर मन में डिस्टर्ब्ड है, ऐसे पर हमें कैसे बात करनी चाहिए? हमें देखना चाहिए कि ये कितना परेशान है, कितना दुखी है जो इस तरह से बोल रहा है। मैं शक्तिशाली, मैं पावरफुल आत्मा हूं, मैं कंपैशनेट हूं, रहम दिल हूं, मुझे समझ है कि इस समय ये दर्द में है, मैं शांत हूं, स्थिर हूं। वो अपमानित शब्द बोल सकते हैं, लेकिन हम स्नेह और सम्मान, प्यार एंड रिस्पेक्ट, वो वाले बोल बोलेंगे। लेकिन हम ऐसे बोल क्यों बोले? क्योंकि वो हमारे संस्कार हैं, क्योंकि वो हमारी स्थिति है। सामने वाला डिस्टर्ब्ड है, मन से बीमार है, इमोशनली हम थोड़ी बीमार हैं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तो जब कोई फिजिकली बीमार होता है तो वो कमजोर हो जाता है, तो आसपास के लोग क्या करते हैं? उसका ध्यान रखते हैं, उसके साथ बैठकर खुद नहीं कमजोर हो जाते। तो जब कोई इमोशनली बीमार होता है तो आसपास के लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए, और उनका ध्यान रखने के लिए क्या करना है? खुद स्थिर शांत। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये करने से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, ये बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमने उनका प्रभाव अपने पर नहीं आने दिया। हर टाइम, जैसे जब आप युद्ध में होते हैं, हर टाइम एक चीज हो रही होती है ना, या तो आप उन पर विजय पाते हैं, या कभी कभी कुछ देर के लिए वो आप पर विजय पाते हैं। ये सारा दिन चल रहा ना, एक नहीं तो दूसरा, ये तो हो ही रहा है। इसी तरह सारा दिन में भी संबंधों में, परिस्थितियों में, या तो हम परिस्थिति और व्यक्ति के व्यवहार पर हावी हो जाते हैं, या परिस्थिति और उनका व्यवहार हम पर हावी हो जाता है। तो आप तो वीर हैं, शूरवीर हैं, तो आप हार नहीं सकते। जब इतने बड़े बड़े जंग में नहीं हारते तो ये तो जीवन की छोटी छोटी बातें हैं, इनमें जीत पानी है, इनमें जीत पानी है। इसको कहते हैं मन जीते। जो मन जीते होगा वो जग जीते होगा, है ना, बचपन से सुनते आए थे, मन जीते जग जीते। तो मन को जीतना है, और मन को जीतना अर्थात अपने अहंकार पर विजय पानी है। उस समय हमें सिर्फ अपने अहंकार को थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है, क्योंकि हमारा अहंकार कहता है ऐसे कैसे कि उन्होंने इतना बोल दिया और मैं चुप रहूं, ये ऐसे कैसे। ये हमारा अहंकार है, और उस समय हमें अपने अहंकार को शांत करके बोलना होता है, वो डिस्टर्ब्ड है, मुझे अपनी शक्ति संभालनी है, मुझे अपनी शक्ति संभालनी है, इस तरह से बात करना मेरी मर्यादा नहीं है, मेरे संस्कार नहीं है, मेरे बड़ों ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया है, मुझे प्यार और सम्मान देना सिखाया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब कोई डिस्टर्ब हो तो उसको सहयोग देना सिखाया है, उसकी सेवा करना सिखाया है, उसकी मदद करना सिखाया है। और इस समय मेरी स्थिति, मेरी शांति, मेरी स्थिरता, मेरा सम्मान, मेरा प्यार, ये ही उनका सहयोग है। ये उनको भी शक्ति देगा, क्योंकि जब हमारी यहाँ बैटरी चार्ज होती है ना, और हम उस तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, तो वो वाइब्रेशन उन तक जाती है और उनकी भी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन हमें ये सिर्फ बाहर से नहीं करना कि हम सही तरह से बात कर रहे हैं, सही तरह से व्यवहार कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम सही तरह से सोच रहे हैं। हमारा हर संकल्प सही होना चाहिए, दुआओं से भरपूर होना चाहिए, शुभ भावनाओं से भरपूर होना चाहिए। किसी के लिए भी कभी भी मन में थोड़ी भी निंदा नहीं आनी चाहिए। जजमेंटल क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा भी नहीं, ऐसे क्यों करते, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे, ये सारी जो थिंकिंग है ना, ये हमारे आंतरिक शक्ति को डिप्लीट करती है। तो आज सारा दिन एक होमवर्क करके देखते हैं, छोटी छोटी बातों जो सारा दिन आसपास में आ रही हैं, परिवार में, घर में, कभी कभी ऑफिस में, ये छोटी छोटी बातों में एक दिन का होमवर्क करके देखते हैं, 24 घंटे का होमवर्क, के 24 घंटे में चाहे कोई भी बात आ जाए मेरे सामने, चाहे कोई भी आ जाए, किसी का कोई भी व्यवहार आ जाए, मेरी जीत मेरी विजय है, मेरी विजय निश्चित है। अर्थात बात मुझ पर हावी नहीं, लोगों का व्यवहार मुझ पर हावी नहीं, मैं स्थिर और मेरी स्थिरता का प्रभाव उन पर हावी होगा। हमारी स्टेबिलिटी, हमारी पीस, हमारी पावर बन जाती है एंड वो पावर दूसरों को एम्पावर करती है। तो हमारी स्थिरता की वाइब्रेशन का प्रभाव उन पर होगा। वो जो बहुत डिस्टर्ब थे, थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा शांत होने लगेंगे। अगर हमने संकल्प से भी गलत नहीं सोचा तो वो चेकिंग जरूर करनी है कि थॉट्स में भी गलत नहीं होना चाहिए। तो एक प्रैक्टिस क्या करनी है कि हर परिस्थिति में मन से विजय हमारी, मन जीते, ये मन जीते की सारा दिन प्रैक्टिस करनी है कि हर सीन में मन जीते। कोई बात आ जाए चिंता नहीं कर सकते, निश्चिंत रहकर बात का सामना कर सकते हैं, क्योंकि चिंता करने से आत्मा की शक्ति घटती है। किसी के व्यवहार को देखकर निंदा नहीं कर सकते, कोई निंदा सुनाता भी है तो हम सुनते नहीं हैं, धीरे से बात को बदल देते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में सुनते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि निंदा ऐसी एनर्जी है जो मेरी आंतरिक शक्ति को घटाती है। तो कोई भी नेगेटिव शब्द, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट, ये हमारी इनर पावर को घटाते हैं, आंतरिक शक्ति को घटाते हैं। तो हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति के व्यवहार के सामने हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी कंफर्टेबल और हेल्दी इमोशंस को यूज करना है। कंफर्टेबल और हेल्दी इमोशंस अर्थात प्यार, सम्मान, अंडरस्टैंडिंग, दूसरे को समझना कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं, उनके मन की स्थिति क्या है, ईर्ष्या नहीं, दूसरे की सफलता में भी खुश होना, दुआएं देना कि उनकी मेहनत की ये रिजल्ट है, उनकी सफलता में खुश होना, उनसे सीखना, उनसे प्रेरणा लेना, लेकिन उनसे ईर्ष्या नहीं करना, शिकायत नहीं, ये ऐसा कैसे, ये ऐसा क्यों, शुक्रिया, शुक्राना, जितना शुक्राना करेंगे ना सारा दिन, तो शुक्राना इस बैटरी को चार्ज करता है। इसी तरह छोटी छोटी बातों में हम ये कंफर्टेबल वाली इमोशंस को यूज करेंगे, अनकंफर्टेबल वाली नहीं। चाहे हमारे चारों तरफ कोई किसी भी इमोशन को यूज कर रहा हो, हमारी चॉइस, हमारी चॉइस वो हेल्दी कंफर्टेबल इमोशन को यूज करना है, क्योंकि वो हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। और हमारी इनर पावर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी इनर पावर सिर्फ हमारी नहीं, पूरे देश की रक्षा करता है, हमारी आंतरिक शक्ति। और छोटी छोटी बातों में ये करते करते हमारा संस्कार बन जाता है कि हर परिस्थिति में हमारी विजय, मन जीत हर परिस्थिति में होते ही है। चाहे कितनी भी कठिन बात आ गई, मन से नहीं हारते, मन से नहीं हारते, मन जीते जग जीते, ये हमारे जीवन का फॉर्मूला बनने लग जाता है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि ये आंतरिक शक्ति किन बातों में थोड़ी सी लीकेज होती है, लीकेज। अब सारा दिन में हमारे जीवन में एक होता है व्यक्ति, दूसरा होता है वस्तु, चीजें भी होती हैं, तीसरा होता है वैभव, बहुत कुछ मिलता है। आप सबको भी जीवन काल में बहुत कुछ मिला है और आगे भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आंतरिक शक्ति को अगर बढ़ाना है तो थोड़ा सा अटेंशन रखना है। व्यक्ति हो, वैभव हो, वस्तु हो, सबके साथ रहना है, सबको सहयोग देना है, चीजों का उपयोग करना है, लेकिन मन की स्थिति उस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, अर्थात हमारा मन उसके झुकाव में नहीं आना चाहिए, हमारा मन उसके लगाव में नहीं आना चाहिए, हमारे मन पर उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रभाव जब पड़ता है, लगाव जब होता है, अटैचमेंट या झुकाव जब हो जाता है, आंतरिक शक्ति घटती है, क्योंकि डिपेंडेंसी में हमेशा इनर पावर घटेगी। डिपेंडेंसी, अब छोटी छोटी चीजों की डिपेंडेंसी देखते हैं, बड़ी बड़ी तो इजी है आपके लिए, लेकिन छोटी छोटी चीजें जैसे वस्तु को अगर हम ले, जैसे कुछ खाना अच्छा लगता है हमें, कोई चीज हमें पीनी अच्छी लगती है, अब उस चीज पर हमारी डिपेंडेंसी होने लग जाती है और हमारा मन क्या कहने लगता है, ये खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ये मिलता है ना तो बड़ी खुशी होती है। अब हम भोजन करते हैं शरीर के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन अगर हमने ये सोचना शुरू कर दिया ये खाने से बहुत अच्छा लगता है, ये खाने से मूड खुश हो जाता है, अब ये चेकिंग है कि खाने की चीज से मूड खुश हो जाए तो वो तो मेरे खाने की चीज पर आसक्ति हो गई, लगाव हो गया, डिपेंडेंसी हो गई, तो वो अटेंशन। कोई भी सब कुछ जो अच्छा लगता है वो खाना चाहिए, लेकिन जो शरीर के लिए हेल्दी है वो ही खाएंगे, लेकिन जब वो सात्विक स्वस्थ देने वाला भोजन आप खाएंगे, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, ये भाषा नहीं यूज करना कि ये खाने से मुझे अच्छा लगता है। अच्छे तो हम हमेशा ही हैं, मन हमेशा हमेशा अच्छा है, हमेशा खुश है, कोई चीज से, कोई वस्तु से, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज हो, कहीं वो घर का कोई सामान हो कि ये मिलेगा ना तो मुझे खुशी होती है। चीजें खरीदनी है शारीरिक आराम के लिए, शारीरिक आराम के लिए, लेकिन मन का आराम अर्थात इमोशनल कंफर्ट चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है, फिजिकल कंफर्ट डिपेंडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं ये मिलेगा ना तो मुझे बहुत फिजिकल आराम मिलेगा। सपोज ये कुर्सी जिस पर मैं बैठी हूं, अब ये कुर्सी मैंने चूज की ना क्योंकि ये कंफर्टेबल है, तो मेरी भाषा मुझे चेक करनी है, मेरी भाषा ये चेक होगी कि ये कुर्सी मुझे चाहिए क्योंकि ये मेरे को फिजिकल कंफर्ट देती है। लेकिन अगर मैंने गलती से ये बोलना शुरू कर दिया ये कुर्सी से मुझे बड़ी खुशी मिलती है, वो रिस्की है, क्योंकि फिर ये कुर्सी से खुशी मिलती है, फिर उस चीज से खुशी मिलती है, फिर उस बात से खुशी मिलती है, फिर जब वो बात नहीं होती तो खुशी नहीं मिलती, तो फिर मेरी आंतरिक शक्ति क्या हो गया, बाहर डिपेंडेंट हो गई। तो कहीं भी लगाव झुकाव, ये चेकिंग के लगाव झुकाव ये नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का हम पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अटैचमेंट, अटैचमेंट लगाव अर्थात अटैचमेंट, अटैचमेंट अर्थात कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड किसी के साथ अटैच्ड तो नहीं है। अब अटैचमेंट हम अलग परिभाषा में लेते हैं, हमें लगता है हमें अपने परिवार से तो बहुत अटैचमेंट है, हम बोलते भी हैं हमारी बहुत अटैचमेंट है, बहुत अटैचमेंट है, बच्चों से बहुत अटैचमेंट है, एक्चुअली वर्ड ही सही नहीं है, अटैचमेंट नहीं, बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। अटैचमेंट और प्यार दो शब्दों में बहुत फर्क होता है, प्यार एंड स्नेह अर्थात कि मेरे तरफ से उनके लिए सदा प्यार है, स्नेह है, दुआएं हैं। अटैचमेंट अर्थात मेरा मन उनके मन से अटैच्ड है, मेरा मन उनके व्यवहार से अटैच्ड है, मेरा मन उनके जीवन में जो हो रहा है उससे अटैच्ड है, और अगर कुछ भी वहां सही नहीं हुआ तो मेरा मन तो डिस्टर्ब होगा ही क्योंकि अटैच्ड है, अटैच्ड है। तो आज से थोड़ा सा वोकैबुलरी को चेंज करते हैं, कभी नहीं कहना कि हम इनसे अटैच्ड हैं, कहना हमारा इनसे बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, अटैच्ड नहीं। अटैच्ड ना हम लोगों से हैं, अटैच्ड ना हम चीजों से हैं, चीजों का यूज करना, लेकिन ये नहीं कभी कहना इसके बिना तो मेरा चलता ही नहीं, ये नहीं होगा तो मेरा मन तो परेशान हो जाता है, ये बोलना नहीं है। ऐसे बोलने से ही आंतरिक शक्ति घट जाती है, क्योंकि हमारी हर बोल हमारी प्रोग्रामिंग कर देती है अंदर। तो हम कहते हैं ना अगर मेरा ये नहीं चला ना ठीक से तो मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है, क्यों, मेरा मन क्या उस चीज पर डिपेंडेंट है, नहीं। इनर पावर, आंतरिक शक्ति मेरा मन किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी वैभव पर डिपेंडेंट नहीं। बाकी मान शान नाम आपको तो पूरा देश मान शान देता है, आपकी कितनी महिमा करता है, आपका कितना शुक्रिया करता है और आपको कितनी दुआएं देते हैं। तो जितनी दुआओं से आप पलते हैं तो आंतरिक शक्ति तो वैसे ही बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि दुआएं मिल रही है ना, सारे करोड़ों करोड़ों लोगों से दुआएं मिलती हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम सबको कुछ इच्छाएं होती हैं कि मेरा नाम हो, मेरा मान हो, कोई तो मेरे बड़े मेरी कभी महिमा करें कि मैंने ये अच्छे से किया। सूक्ष्म चेकिंग है। वैसे तो आप सब कुछ निस्वार्थ भाव से करते हैं, सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा की भावना से करते हैं, लेकिन हमारे कुछ पुराने संस्कार होते हैं, हमारी कुछ सूक्ष्म कमजोरियां होती हैं, जिसकी वजह से ये इच्छाएं आ जाती हैं कि कोई तो मुझे कहे कि मैंने अच्छा किया, मैंने सही किया, कोई तो मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ाए, मेरा प्रोत्साहन करे, मेरे की थोड़ी सी मेरा मोटिवेशन करे। ये इच्छा भी नहीं रखनी है। वो करेंगे तो हमारा शुक्रिया ही मिलेगा, दुआएं ही मिलेंगे, लेकिन इच्छा नहीं। इच्छा आंतरिक शक्ति को घटाती है। इच्छा, परमात्मा कहते हैं, इच्छा अच्छा नहीं बनने देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। करना सब कुछ है, श्रेष्ठ कर्म करना है, निस्वार्थ सेवा करनी है, लेकिन सेवा करनी है। सेवा अर्थात एनर्जी कौन सी है? सिर्फ देने की। हम तो सिर्फ देने के लिए हैं, देश की सेवा के लिए हैं। और सारा दिन में भी अपने परिवार को संभालना, वो भी परिवार की सेवा ही है, क्योंकि जो देश की सेवा कर रहे हैं वो परिवार की तो ऑटोमेटिकली सेवा कर रहे हैं। कहीं भी किसी से भी कोई इच्छा नहीं कि मुझे कोई मान शान नाम मिले। क्या होगा? जहां थोड़ी सी भी इच्छा होगी ना, वहां आंतरिक शक्ति थोड़ी घट जाएगी। अगर वो मिला तो कभी कभी अहंकार बढ़ जाता है, और अगर वो नहीं मिला तो कभी मन की स्थिति डाउन हो जाती है। दोनों ही तो हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हम परमात्मा के फरिश्ते हैं, हम भगवान के सेवाधारी हैं, हम देश के सेवाधारी हैं, निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके इंस्ट्रूमेंट है, वो हमें यूज करता है। अगर हमें किसी से महिमा मिले, किसी से प्रशंसा मिले, तुरंत ये उस समय करना है ताकि इनर पावर बचकर रहेगी। इनर पावर को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ी सी स्लिपरी है, सडनली खिसक जाती है, नहीं तो इनर पावर को संभालने के लिए अगर कोई महिमा करे, बहुत प्रशंसा करे, आपको अवार्ड्स मिले, इतना कुछ नाम मान शान हो, लेकिन जैसे ही वो मिले और आप झुक कर शुक्रिया भी करें, एक चीज ध्यान रखनी है, ये संकल्पों में है अंदर, तुरंत उस महिमा को, उस प्रशंसा को समर्पित कर देना परमात्मा को, उसको स्वीकार नहीं करना कि ये मैंने किया, आपने करवाया, मैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट हूं। ये बहुत 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 बड़ी प्रोटेक्शन है, ये हमारे अंदर की ह्यूमिलिटी, हमारे अंदर की नम्रता को, हमारे आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। अहंकार, अहंकार हमारी आंतरिक शक्ति को घटाता है। अहंकार अर्थात मैंपन, मैंपन अर्थात मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया, मेरी वजह से ये हुआ, ये मेरा आइडिया था, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ये जो मैं है, ये अहंकार का मैं है। और अहंकार का मैं आंतरिक शक्ति को घटाता है। मैंने ये किया, हम यहाँ पर एक अलग बहुत बड़ा ऐसा विजुअल बना लेते हैं, मैं, ये मैं आंतरिक शक्ति को घटाता है। इसलिए इस मैं की बलि चढ़ानी है, इस अहंकार को स्वाहा करना है। तो जब भी कोई महिमा मिले, कोई प्रशंसा मिले, नम्रता से शुक्रिया, शुक्राना, लेकिन अंदर से तुरंत उसी क्षण समर्पित, ये सब आपकी वजह से, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, आपने मुझसे ये करवा लिया, सिंपल। अब जो महिमा में सब कुछ समर्पित कर देंगे, तो कभी अगर किसी कारणवश निंदा होती है, कभी कभी हो जाती है, शायद हमारी कोई गलती होती है या कभी कभी सामने वाले का व्यवहार डिस्टर्ब होता है, लेकिन जो महिमा में अपनी रक्षा करते हैं, यह है सेल्फ प्रोटेक्शन। जो महिमा में अपनी रक्षा करते हैं, महिमा को ऊपर परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, महिमा को स्वीकार करके अपने अहंकार को नहीं बढ़ाते, लेकिन अपनी विनम्रता को, अपनी ह्यूमिलिटी को ही बढ़ाते रहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता, ये अंदर की कॉन्शियसनेस होती है कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भगवान ने करा लिया, बस उनका शुक्रिया, आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। बोल नहीं, सोच में, अंडरस्टैंडिंग में ये चाहिए। तो जो महिमा में स्थिर रहेंगे, फिर अगर कभी किसी भी कारणवश निंदा आती है, निंदा मिलती है, तो उसमें स्थिर रहना बहुत बहुत सहज और बहुत बहुत नेचुरल हो जाता है। उसमें फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि महिमा में स्थिर रहे थे तो निंदा में भी। अगर वो हमें कोई शिक्षा दे रहे हैं तो हम उसको सीख लेते हैं, हम उनसे फीडबैक ले लेते हैं, बाकी उनकी जो क्रिटिसिज्म की एनर्जी है वो हम पर कोई असर नहीं करती, क्योंकि हमने महिमा को स्वीकार नहीं किया था। अर्थात जो महिमा के झुकाव में नहीं आए थे, जिनके ऊपर महिमा का प्रभाव नहीं पड़ा, उनके ऊपर निंदा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। ये एक स्पिरिचुअल लॉ है, ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। जैसे अगर आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो अगर उस बॉडी पर सर्दी के मौसम का असर नहीं पड़ा, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो उस इम्यूनिटी पर गर्मी के मौसम का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, महिमा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो निंदा का तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पुरुषार्थ और अटेंशन और मेहनत निंदा के टाइम नहीं करनी कि निंदा का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़े, अटेंशन महिमा के टाइम करनी है कि महिमा को मन से स्वीकार नहीं करना, शुक्रिया करना लेकिन समर्पित कर देना, सरेंडर, मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं। तो इनर पावर, आंतरिक शक्ति, अर्थात निंदा स्तुति एक समान, निंदा स्तुति, दुख सुख एक समान। पेंडुलम कैसे होता है? सेंटर में होता है। कभी पेंडुलम इधर चला जाएगा तो फिर उधर भी चला जाएगा, लेकिन अगर सेंटर में हुआ तो जब महिमा मिले पेंडुलम को सेंटर में रखो, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है पेंडुलम को सेंटर में रखो। अगर वो जो अच्छा चल रहा है उसमें खुशी एक्सपीरियंस करते हैं बातों की वजह से, अपनी स्थिति की वजह से नहीं, इतना अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चीज इतनी अच्छी है मुझे बहुत खुशी हुई, तो अगर पेंडुलम इधर चला गया तो फिर पेंडुलम उधर भी चला जाता है। तो इसलिए सुख दुख, निंदा स्तुति एक समान, ये है आंतरिक शक्ति, ये है इनर पावर, जो हर परिस्थिति में विजय, परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आएगी, लगाव में नहीं आएगी, झुकाव में नहीं आएगी, विजय, विजय जो किसी के हारता नहीं है, हमेशा मन जीते, किसी के आगे झुकता नहीं है, झुकना अर्थात उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता, ये है स्वराज्य अधिकारी आत्मा। तो बैटरी को सारा दिन संभाल के चलना है, सारा दिन अटेंशन से चलना है, ये कोई भी सारी छोटी छोटी बातें जो आती रहती है ना, इसके प्रभाव में, लगाव में, झुकाव में नहीं। प्यार सबसे, ध्यान अच्छे से सबका रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, आप तो देश का ध्यान रखते हैं, लेकिन लगाव नहीं, सेवा भाव, भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लगाव है अटैचमेंट या ये सेवा भाव है, सेवा करने के लिए अटैचमेंट, डिपेंडेंसी बहुत सूक्ष्म है। ऐसा लगता है कि इतना क्या फर्क है इसके अंदर, लेकिन इसी में, ये छोटी छोटी बातों में ही आंतरिक शक्ति या तो बढ़ती है या आंतरिक शक्ति थोड़ी सी घट जाती है। अब हम सबको रोज कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे ये बैटरी को हम चार्ज कर सकें, क्योंकि चार्ज बैटरी का तो फिर हम सारा दिन ध्यान रख लेंगे, लेकिन रोज उस बैटरी को चार्ज तो करना चाहिए ना। तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस बैटरी को हम क्या कहते हैं, पावर, कॉन्शियसनेस, आत्मा, सोल, स्पिरिट, एनर्जी, लाइफ, इसको हम लाइफ भी कह सकते हैं। ये लाइफ यहाँ है, ये एनर्जी ही डिसाइड करती है कि इन आंखों से क्या देखना है, इस मुख से क्या बोलना है, इन हाथों से क्या काम करना है, मन में क्या सोचना है, ये लाइफ करती है। जब ये लाइफ निकल जाती है तो सिर्फ ये बॉडी रह जाती है, सिर्फ ये बॉडी, लाइफ निकल गई। कहते हैं ना, दे आर गॉन। कौन गॉन? द लाइफ इज गॉन, द बॉडी इज स्टिल देयर, शरीर वही है। उस शरीर को अर्थी भी कहते हैं। अर्थी अर्थात रथी निकल गया, जो रथी बैठा था, जो इस रथ को चलाता था। जब वो रथी जो इस रथ को चलाता था वो निकल जाता है, तो फिर इस शरीर को जो पीछे रह जाता है उसको अरथी, अरथी कहते हैं। बहुत सिंपल है, हम सबको ये सारी बातें पता हैं, लेकिन हम सारा दिन के अपने जीवन की यात्रा में क्या इस स्मृति से चलते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर के मालिक हूँ, इन कर्म इंद्रियों के मालिक हूँ, इन मन बुद्धि संस्कार के मालिक हूँ। तो अब सुबह सुबह ये वाली ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। जैसे आप शरीर के स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करते हैं, तो आत्मा की स्ट्रेंथ की भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। सुबह उठकर पहला संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह का पहला संकल्प तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सुबह का पहला संकल्प, परमात्मा का शुक्रिया। जीवन में कोई भी बात आई हो, लेकिन शुक्रिया उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। शुक्रिया हमारा संस्कार, शुक्रिया ग्रैटिट्यूड हमारा जीवन जीने का तरीका। ऐसे नहीं कि सब कुछ जब अच्छा चल रहा हो तो शुक्रिया शुक्रिया, जब अच्छा नहीं चल रहा हो तो किस बात का शुक्रिया। ऐसा नहीं, शुक्रिया परिस्थिति पर निर्भर नहीं, शुक्रिया हमारी स्थिति, क्योंकि शुक्रिया आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। शुक्राना शुक्राना करते रहें। तो सुबह उठकर सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया, दूसरा अपने मन और अपने शरीर का शुक्रिया, इसका शुक्रिया करना है सुबह सुबह, तीसरा सब लोग जिनके आप अंग संग संपर्क में आते हैं, परिवार में, ऑफिस में, कलीग्स में, सबका सबका शुक्रिया, अपनी सेवा का। कितना भाग्य है, इतना श्रेष्ठ भाग्य है एक ऐसे समय पर जब लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए काम करते हैं और अपने लिए ही जीते हैं, अपना मतलब अपना परिवार। ऐसे समय पर आप देश के लिए जीते हैं, आप वीरता से, निस्वार्थ भाव से, अथक होकर हमेशा रेडी हैं। कितना भाग्य है, कितने श्रेष्ठ कर्मों का ये फल है कि ऐसा रोल मिला है, ऐसी सेवा मिली है। ये तो बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्यों का फल होता है। तो इसलिए अपने श्रेष्ठ कर्मों का और इस समय जो सेवा मिली हुई है, जो भाग्य मिला हुआ है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और पांचवा प्रकृति का शुक्रिया, क्योंकि प्रकृति हमारी पालना करती है। तो परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया, अपने साथ जो लोग हैं सारे उनका शुक्रिया, अपनी सेवा का शुक्रिया और प्रकृति का शुक्रिया। तो सुबह सुबह सबसे पहले पांच संकल्प शुक्रिया के होने चाहिए। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं, ध्यान। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को पहचानते हैं कि मैं कौन हूं, और अपने मन की तैयारी करते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं। देश के सेवाधारी तो हैं, लेकिन किसके बिहाफ पर, मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, भगवान मुझे यूज करते हैं सारा दिन सबको सुख देने के लिए, भगवान मुझे यूज करते हैं सबकी रक्षा करने के लिए, मैं उनका फरिश्ता हूँ। ये अपनी तैयारी सुबह सुबह करनी है। मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, परमात्मा मुझे यूज करते हैं सबकी रक्षा करने के लिए। तो रोज सुबह कुछ संकल्प लेकर हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन में हम अपने ओरिजिनल गुण, ओरिजिनल संस्कार, वो हेल्दी वाली इमोशंस जो हमें सारा दिन में फिर कर्म में यूज करनी है, उनके यहाँ प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे जैसे हम उनको याद करते हैं और वो वाली जो स्थिति है वो यहाँ रिकॉर्ड होती जाती है। फिर मेडिटेशन में हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं। ये बैटरी है तो इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए पावर हाउस से जोड़ना ही पड़ेगा। तो आत्मा बैटरी, परमात्मा, परमात्मा पावर हाउस। तो परमात्मा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन परमात्मा पावर में बहुत बड़ा है। निराकार परमात्मा, प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान, स्नेह का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, उस निराकार परमात्मा से हम कनेक्शन जोड़ते हैं मेडिटेशन में। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान को याद करते हुए मन बुद्धि इधर उधर थोड़ी सी चली जाती है। कहते हैं भगवान को याद करने बैठे थे तो मन बुद्धि इधर उधर क्यों चली गई। तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन अब भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना है। कनेक्शन जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कनेक्शन जोड़ के बैटरी को चार्ज करना है, पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़ना है। वो है राजयोग मेडिटेशन, जो कि आज आप सब सीखेंगे। भले आपके नजदीक जो सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन, वहां पर जाकर सीखेंगे, या फिर आजकल तो ऑनलाइन भी चल रहा है तो ऑनलाइन सीखेंगे। अब जब तक आप वो सीखे, तब तक हम रोज सुबह कुछ श्रेष्ठ संकल्प कर लेते हैं कि सुबह सुबह के सबसे श्रेष्ठ संकल्प, मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, वो सर्वशक्तिवान है, मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, तो मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, शक्तिशाली, सदा विजयी, सदा विजयी। जो सर्वशक्तिवान की संतान है उसकी हार थोड़ी होती है कभी, सदा विजयी। तो सेकंड संकल्प, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ, सदा विजयी आत्मा हूँ। तीसरा, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, सबको सुख देने वाला, सबको सम्मान और प्यार देने वाला, सबकी सेवा और सबकी रक्षा करने वाला, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ये रोज अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, रोज मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सेवाधारी हूँ, सबको देने वाली देने वाली देने वाली आत्मा हूँ। ये सुबह सुबह फिर अपने शरीर के लिए संकल्प करें, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा परफेक्ट रहेगा। फिर एक बहुत ब्यूटीफुल संकल्प करें कि परमात्मा की प्योरिटी एंड पावर, परमात्मा की शक्तियों का मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। विजुअलाइज करें इसको, परमात्मा की डिवाइन लाइट के एनर्जी सर्कल में है, एक व्हाइट लाइट का एनर्जी सर्कल। जैसे आप सबके यूनिफॉर्म्स ऐसे होती है ना, जो आपको किसी के वार से बचा लेते हैं, जिसको हम कहते हैं बुलेट प्रूफ, तो वो आपको दूसरे के वार से बचा सकती है। किसको बचाती है? शरीर को बचाती है। लेकिन हमारे आसपास वाइब्रेशंस भी बहुत होती हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हवा में कौन सी एनर्जी है वाइब्रेशंस की, कभी कभी उनका हमारे मन पर प्रभाव पड़ जाता है, और हमारा मन कभी कभी थोड़ा सा हलचल में आ जाता है, हमारे मन में कभी कभी नीरसता आ जाती है, कभी कभी उदासी आ जाती है। हम उसको ठीक करना जानते हैं, लेकिन कभी कभी वो हम पर हावी हो जाती है। इसलिए एक और सुरक्षा कवच पहनना है, और वो है परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच। इस सुरक्षा कवच को रोज सुबह पहना कीजिए। ये तो एक थॉट में पहना जा सकता है, तो विजुअलाइज कीजिए परमात्मा की डिवाइन लाइट का एनर्जी सर्कल मेरे चारों तरफ है, ये मेरा सुरक्षा कवच है, मैं सदा सुरक्षित हूँ, मैं सदा विजयी हूँ। छोटे छोटे संकल्प है ना, कितने सिंपल हैं। फर्स्ट, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। विजय, सदा विजय, विजय मेरे लिए निश्चित है, निश्चित हो। मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, सेवाधारी हूँ, सबको सुख देने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, मैं सेवाधारी हूँ। छोटा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या, मैं सिर्फ निस्वार्थ सेवा दे करता हूँ। फिर मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और फिर परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ पहन ले, मैं सदा सुरक्षित हूँ। किसी परिस्थिति की वाइब्रेशन से, किसी व्यक्ति के व्यवहार की वाइब्रेशन से, या किसी और बड़े वार से, मैं सदा सुरक्षित हूँ, विजय मेरे लिए निश्चित है। ये संकल्प हम रोज करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है, थॉट्स मैनिफेस्ट, तो वो संकल्प जरूर करने हैं। तो सुबह उठकर इन संकल्पों को 5 बार कम से कम दोहरा ले, 5 मिनट से कम लगेगा, 5 बार दोहरा ले और दोहराते हुए उसको यहाँ देखते जाए। दृश्य जरूर बनाना है यहाँ पर, जो चित्र हम देखते हैं यहाँ पर वो हमारा चरित्र बन जाता है, चित्र से चरित्र बनता है। तो यहाँ उस चित्र को देखना है, मैं विजयी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निडर, ये सारा चित्र यहाँ बनाना है, वो हमारा चरित्र, हमारी पर्सनालिटी बनता जाएगा। तो सुबह 5 मिनट 5 बार इसको दोहराइए। सपोज मन में एकाग्रता से ये नहीं हो रहा तो इसको बोल कर करिए, और अगर बोल कर भी नहीं हो रहा लिख लीजिए। आप रोज इन संकल्पों को लिख सकते हैं, जैसे जैसे आप इन संकल्पों को लिखते जाएंगे वो आपके यहाँ रिकॉर्ड होता जाएगा। फिर कम से कम 15-20 मिनट, ये करना थोड़ा सा बहुत जरूरी है, 15-20 मिनट कुछ बहुत प्योर एंड पावरफुल कंटेंट जरूर स्टडी कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। स्पिरिचुअल स्टडी ये हमारी पावर है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म क्या है? परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, वो ईश्वरीय महावाक्य जब अंदर भरते हैं तो वो मन के लिए खुराक बन जाते हैं। सारा दिन में कितनी सारी बातें जाती है हमारे मन के अंदर, इतनी सारी बातें जाती हैं तब भी इस पर प्रभाव पड़ जाता है। तो सुबह सुबह ईश्वरीय महावाक्य, भगवान का दिया हुआ ज्ञान, इस पर जरूर भरना है, वो हमारी खुराक होती है। इसको हम कहते हैं इमोशनल डाइट। तो सारा दिन में जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारे मन की खुराक होती है, उसी से हमारे संकल्प बनते हैं। तो बहुत ध्यान रखना, कम से कम 15 मिनट सुबह वो खुराक, वो स्पिरिचुअल नॉलेज, वो विजडम अपने अंदर जरूर भरनी चाहिए। तो 5-10 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट वो खुराक, आधे घंटे से भी कम चाहिए इसके लिए, आधे घंटे से भी कम, लेकिन ये अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए, अपनी दिनचर्या का। सुबह उठकर ये करना जरूरी है, ये हमारी आंतरिक शक्ति को बहुत सेफ रखता है और हमारी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर रखता है। फिर रात को सोने से पहले 5 मिनट ये फिर से करना है। सो रात को सोने से पहले 5-10 मिनट फिर से कुछ अच्छा पढ़ लेंगे या सुनेंगे, और जस्ट सोने से पहले उन संकल्पों को दोहरा लेंगे। इन संकल्पों को सोने से पहले दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रात को सोने से पहले जिस बात को दोहराएंगे ना, तो नींद में वही एनर्जी यहाँ चलती रहेगी और वही एनर्जी हमारे शरीर को मिलेगी। कभी भी साधारण या नेगेटिव थॉट क्रिएट करके नहीं सो जाना, बहुत पावरफुल प्योर थॉट्स क्रिएट करते हुए सोना है। तो सुबह सबसे पहले करना है और रात को सोने से पहले जरूर करना है, और एक बार और जरूर करना है जब हम भोजन करते हैं, अर्थात जब हम खाना खाते हैं, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, जैसा पानी होता है वैसी वाणी होती है। तो अन्न और पानी के वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पूरी साइंस है कि अन्न और पानी का जो वाइब्रेशन होगा ना, वही हमारे मन की स्थिति बन जाएगी। सात्विक भोजन खाइए। मुझे पता है आप सबकी कई बार प्रोग्रामिंग हो जाती है, ऐसे मान्यता बन जाती है कि नॉन वेजिटेरियन खाना हमें बहुत पावरफुल बनाता है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि नॉन वेजिटेरियन खाने से आपका शरीर ज्यादा शक्तिशाली बनता है, लेकिन अब तो आपके सामने कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सात्विक वेजिटेरियन खाते हैं और उनका शरीर बहुत शक्तिशाली है। लेकिन हमें शरीर के साथ साथ मन भी शक्तिशाली चाहिए। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न कैसा होना चाहिए जिससे मन शक्तिशाली बने? अन्न तो प्रसाद की तरह होना चाहिए। प्रसाद रोज खाना चाहिए, प्रसाद से मन को शक्ति मिलती है। तो हमारा अन्न प्रसाद हो और हमारा पानी अमृत हो। वो कैसे होगा? अगर हम वो सात्विक अन्न में परमात्मा की याद शुक्रिया करके अपने वो संकल्प डाल दे। 3-4 सेकंड लगते हैं सिर्फ, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे हम हाथ धोए बिना कभी खाना नहीं खाते, प्लेट धोए बिना तो नहीं खाना डालेंगे उसमें, उसी तरह हम एनर्जी को धोए बिना खाना नहीं खाते। तो 5 सेकंड परमात्मा को शुक्रिया और उसमें संकल्प डाल दीजिए, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं इच्छा मात्र अविद्या हूँ। हाइएस्ट एनर्जी थॉट्स है ये खाने में डाल दीजिए, ये अपने पानी पीने से पहले भी डाल दीजिए, क्योंकि पानी में भी ना आसपास की बहुत वाइब्रेशंस होती हैं। पानी वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब कर लेता है और जैसा पानी हम पिएंगे वैसे हमारी मन की स्थिति और वाणी बन जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो, किसके घर का नमक खाते हो, ये इन शब्दों का क्या अर्थ होता है? अर्थात हम जिस शहर का पानी पियेंगे, जिस घर का नमक खाएंगे, उसका प्रभाव हम पर होता है। तो इसलिए हमें अन्न और पानी में भी वो वाइब्रेशंस जरूर डालनी है। और जब हमारा अन्न और पानी परमात्मा की याद की श्रेष्ठ वाइब्रेशन से एनर्जाइज हो जाएगा तो हमारा मन सुरक्षित रहेगा, किसी भी प्रभाव लगाव झुकाव से सुरक्षित रहेगा। खुद की सुरक्षा, देश की रक्षा तो करते हैं, दिन रात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन के, अपनी एनर्जी के, अपनी इस आंतरिक शक्ति की रक्षा करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तो उन संकल्पों को लिख लीजिएगा, सुबह जरूर करिएगा, रात को सोने से पहले जरूर करिएगा और भोजन और पानी पीने से पहले जरूर करिएगा। और फिर आप मेडिटेशन तो सीखेंगे ही, और मेडिटेशन सीख के परमात्मा से बहुत प्यारा सा रिश्ता बनाकर ईश्वरीय शक्ति को आंतरिक शक्ति में भरकर हर कर्म बहुत श्रेष्ठ, मन जीते जग जीते बन जाएंगे। आइए कुछ क्षणों के लिए इसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं। सीधा होकर बैठिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, बॉडी को रिलैक्स करिए और यहां पर विजुअलाइज कीजिए ये एनर्जी सेंटर है, आत्मा का रहने का स्थान, ऊर्जा जो पूरे शरीर को चलाती है, लाइफ यहाँ रहती है। तो यहाँ पर एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, एक स्टार को विजुअलाइज कीजिए, देखना है उस चित्र को, और अपने ऊपर ऊपर एक और स्टार को विजुअलाइज कीजिए, परमात्मा। मैं आत्मा स्टार, परमात्मा स्टार, ये 2 चित्र देखने हैं। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तिशाली संतान हूं, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मेरे श्रेष्ठ कर्मों का फल, मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं भगवान का फरिश्ता हूं, सबकी रक्षा करने वाला, सबको सुख और सहयोग देने वाला, मैं मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। हर परिस्थिति में शांत स्थिर निश्चिंत निडर हर परिस्थिति में मेरी विजय निश्चित है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा मेरा मन मेरी कर्म इंद्रियां मेरे अनुसार चलते हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सर्वशक्तिमान परमात्मा की सर्वशक्तियां मुझ आत्मा में भर रहे हैं। देखें इस दृश्य को कि परमात्मा से सारी शक्तियां यहां आ रही हैं, जैसे लेजर बीम कैसे आती है, जैसे सूर्य की किरणें कैसे आती हैं। इस दृश्य को बार बार देखना है कि परमात्मा से उस शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में भर रहे हैं। मैं आत्मा बैटरी चार्ज होती जा रही हूं। और परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच बन गए हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों के सुरक्षा कवच में हूं। सदा सुरक्षित सदा विजयी निस्वार्थ सेवाधारी परमात्मा का फरिश्ता हूं मैं।
दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर शिवानी जी आपका। आपने इस विषय पर जो सुंदर प्रकाश हमें दिया है, मार्गदर्शन किया है, निश्चित रूप से इस पर हम सब कार्य करेंगे और अपने जीवन को भी स्थिर बनाएंगे, क्योंकि यही समय की मांग है, ऐसा हम सब महसूस कर रहे हैं। बाहर संसार में तो ये बातें जो आपने हमें दी हैं, जो दो दिनों से हम सुन रहे हैं, हमें और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए अब इस पर आत्ममंथन करते हुए अपने आप को स्थिर करना, यही सचमुच समय की भी मांग है और इस पर हम सब कार्य जरूर करेंगे। दिल से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, पिछले दो दिनों से इतने सुंदर ज्ञान रत्न हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक एक जो मूल्यवान कथन हमारे सामने रखे गए महापुरुषों के भी और अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से भी, इन महारथियों के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से ज्ञान से योग से आध्यात्म से सजाया है, उसकी निचोड़ उन्होंने हम सबके सम्मुख रखी है। अब बारी हमारी है कि हम उसे कैसे अपने जीवन में उतारते हैं। क्योंकि एक शिष्य था, अपने गुरुजी से एक शिकायत करता था कि गुरुजी, इतने लंबे समय से आपकी बातें, आपके प्रवचन, अच्छी अच्छी बातें मैं सुनता हूं, लेकिन वो मेरे अंदर क्यों नहीं जा रहा है, क्यों मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्यों समस्याएं यथावत बनी हुई हैं। गुरुजी ने कहा कि ऐसा कर, जा बाजार से तो मिठाई खरीद के ले आए 1 किलो। अब शिष्य गया और खरीद के ले आया। अब गुरुजी ने कहा कि इसे अपने सामने रख ले। बैठा रहा इसके सामने, बैठा रहा, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे हो गए। गुरुजी ने कहा कि तू इसके मिठास को अनुभव कर रहा है? तो शिष्य ने कहा, जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक ये मिठास कैसे मेरे अंदर जाएगी, इसे तो मैं केवल अपने सामने रखा हुआ हूं। बात वही है, हमने सुनी, हमें बहुत अच्छी लगी बातें, लेकिन केवल इसे अपनी डायरी के पन्नों तक सीमित ना रख दें, केवल इसे एक अच्छे अनुभव तक ही सीमित ना रख दें कि ये 2 दिन बड़े अच्छे थे जो हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन अब इसे आप खाएं, चबाएं, चिंतन में लाएं, अपने जीवन में उतरने दें। जब आप इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे इन बातों का, तो सुंदर एक्सपीरियंस होगा और जीवन में सकारात्मकता, स्थिरता और शक्ति की आप अनुभूति करेंगे। उस परम सत्ता तक भी पहुंच पाएंगे जिस तक पहुंचने की हम कामना रखते थे। अपने आप को भी सही रूप में समझ पाएंगे, जिसकी जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इन बातों पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। मुझे चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही है, ईश्वर की ओर से ये बात कही है। ईश्वर कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तो वो होगा जो तू चाहता है। अब तक तो हम अपनी चाहना के अनुसार जीते रहे हैं, लेकिन अब जो सत्य है उस ओर हम चलें, उसकी चाहना के अनुसार अच्छाई की ओर यदि कदम बढ़ाएंगे, तो सचमुच जो अनिश्चितता की हम बात कर रहे हैं वो निश्चितता में परिवर्तित होती चली जाएगी और हमारा जीवन सुख शांति और सुकून से परिपूर्ण होता चला जाएगा। तो ये दो दिन का सफर यहां पूर्ण नहीं हो रहा है। आप चाहेंगे कि इसे यहां ही हम विराम दे दें? हम नहीं चाहेंगे कि आपका साथ हम छोड़ें। इसीलिए अगले 7 दिनों तक आपके लिए सुंदर राजयोग मेडिटेशन कोर्स की व्यवस्था की गई है, शाम को 7:30 बजे से लेके 8:15 बजे तक। 24 मई से 30 मई तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए जूम लिंक है omshanti.in/rajyoga। इसके साथ साथ YouTube लिंक है tiny.cc/rajyoga2021। तो आप सबके लिए दिल से बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं कि आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याण से भरा हुआ हो और अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।